ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक तौर पर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज अपने पहले मन की बात को संबोधित किया आकाशवाणी पर। अशोक जी, प्रधानमंत्री जी ने आज मन की बात में अनेक चीजों का जिक्र किया। उन्होंने देशवासियों का आभार भी व्यक्त किया। एक सफल चुनाव के आयोजन पर चुनाव आयोग को उन्होंने बधाई दी। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा चुनाव हुआ, इस पर उन्होंने अपने वक्तव्य दिए। अगर आप दृष्टि डालें, हॉलिस्टिक व्यू दें कि आज की मन की बात को आप कैसे समग्र तरीके से इसकी विवेचना करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे?
सबसे पहले हमें अपने श्रोताओं को ये बताना जरूरी है कि ये मन की बात कार्यक्रम जो लगातार चल रहा था और उसके 110 जो मासिक संस्करण हुए थे, तो उस समय प्रधानमंत्री ने कहा था 25 फरवरी को कि चुनाव के चलते इसको हम अभी रोक रहे हैं और इसके बाद 30 जून को मैं आपसे फिर मिलूंगा। तो ये जो एक प्रधानमंत्री का विश्वास था कि वो वापस आएंगे और 30 जून को आकर फिर से मन की बात शुरू करेंगे, तो वही विश्वास जो है जनता ने उनमें व्यक्त किया है और तीसरी बार लगातार उनको प्रधानमंत्री पद पर शोभित किया है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये मुझे बहुत खुशी हो रही है कि चुनाव के कारण कुछ महीनों के अंतराल के बाद मन की बात अब वापस आया है और इसमें फिर उन्होंने चुनाव की भी चर्चा की। तो ये एक भूमिका भी हमारे श्रोताओं को बताना बहुत आवश्यक है कि ये मन की बात कार्यक्रम कोई पहली बार शुरू नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें तो 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था और इसका मकसद जो था कि देश के सभी वर्गों से प्रधानमंत्री चाहते थे वो जुड़ रहे और 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अतिरिक्त मन की बात 11 विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित किया जाता है। इनमें फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियाई, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तो, फारसी, दारी और ऐसी कई भाषाएं हैं और मन की बात के प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो के 500 से ज्यादा प्रसारण केंद्रों से किया जाता है और ऐसा दावा है कि 100 करोड़ से ज्यादा लोग कम से कम एक बार मन की बात से अवश्य जुड़े रहते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बताना बड़ा आवश्यक था और उसके लिए प्रधानमंत्री ने धन्यवाद भी दिया देश की जनता का कि उन्होंने हमारे संविधान और देश की लोकतांत्रिक परंपराओं, व्यवस्थाओं पर विश्वास जगाया है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होते हुए जो चुनाव हुआ देश में, वो दुनिया के किसी भी देश में इतना बड़ा चुनाव कभी नहीं हुआ। इसमें 65 करोड़ लोगों ने वोट डाले और इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग और मतदाताओं को इस प्रक्रिया के लिए बधाई भी दी। तो हम अगर बात करें आज के मन की बात की, उसमें प्रधानमंत्री ने अनेक मुद्दों पर बात की और मैं समझता हूँ उसमें एक बहुत आवश्यक मुद्दा जो हमारे आकाशवाणी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है कि आज जो आकाशवाणी पर संस्कृत का जो एक हमारा बुलेटिन चलता है उसके 50 वर्ष हुए हैं और उस पर उन्होंने फिर प्रधानमंत्री ने उस संदर्भ में संस्कृत की बात भी की और ये 30 जून को आकाशवाणी का संस्कृत बुलेटिन अपने प्रसारण के 50 साल पूरे कर रहा है। 50 वर्षों में लगातार इस बुलेटिन ने कितने ही लोगों को संस्कृत से जोड़े रखा है, तो उसके लिए उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के परिवार को बधाई भी दी और संस्कृत के बारे में बात की और ये कहा कि बेंगलुरु में एक पार्क है, यहाँ के लोगों ने एक नई परंपरा शुरू की है, वो हर हफ्ते एक दिन हर रविवार बच्चे, युवा, बुजुर्ग आपस में संस्कृत में बात करते हैं। इतना ही नहीं, ये वाद विवाद में इनके कई सत्र संस्कृत में भी होते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका जिक्र करना बहुत जरूरी था। अब हम अगर बात करें तो जिन विषयों पर प्रधानमंत्री ने बात की, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि उन्होंने जो आदिवासी भाई बहनों के जो त्योहार है हूल दिवस, उसके बारे में हाथ ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये दिन हमारे आदिवासी भाई बहन जिसको हुल दिवस के रूप में मनाते हैं, ये वीर सिद्धो कानू इन जो आदिवासी नेता के वीर जिन्होंने संथाल साथियों के साथ एकजुट होकर अंग्रेजों के साथ लोहा लिया था, तो ये 1855 में हुआ था, तो उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो दिन को छू जाने वाली थी वो थी कि माँ का जो रिश्ता है उसके हवाले से उन्होंने कहा दुनिया में माँ का हिस्सा सबसे बड़ा, तो एक पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया, एक पेड़ माँ के नाम, और उन्होंने कहा कि मैंने भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाया है। तो सभी देशवासियों से और उन्होंने अपील की कि सब लोग अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ अवश्य लगाएं और माँ की स्मृति में या उनके सम्मान में इस अभियान में बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री ने कही उस पर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया।
बिल्कुल, एक पर्यावरण को इस तरीके से एक माँ और बेटे के रिश्तों से जोड़ना ये बहुत अपने आप में यूनिक है, क्योंकि लोग इससे जुड़ेंगे। अगर सीधे तौर पे कोई पेड़ पर्यावरण को सोच के ना लगाए तो कम से कम अपनी माँ के नाम से लगाए, तो मुझे लगता है कि इसका बड़ा व्यापक असर होगा अशोक जी, क्योंकि लोग अपनी माँ से तो जुड़े ही रहते हैं।
बिल्कुल, ये पर्यावरण को एक तरह से बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी जैसे कहा कि धरती माँ भी हमारी माँ है, तो हम उसके संरक्षण के लिए पेड़ लगाते हैं, लेकिन अगर हम उसको अपनी अपनी माँ को श्रद्धांजलि देने या उनको एक तरह से स्नेह के साथ जोड़कर करेंगे तो ये और ज्यादा इसमें माँ की स्मृति में और उनके सम्मान में पेड़ लगाएंगे तो लोग इससे जुड़ भी रहे, फिर चाहे कोई गरीब हो या अमीर हो, चाहे कामकाजी महिला हो गृहिणी हो, तो माँ के प्रति अपना स्नेह जताने का इससे बढ़िया असर कोई हो नहीं सकता। और इसी कड़ी में जब बात हुई कि अब मानसून आ रही है या आ चुकी है, तो प्रधानमंत्री ने एक विशेष तरह के छातों के बारे में बात, और ये ऐसे छाते तैयार हो रहे हैं केरला में
कार्थुम्बी,
जो कि केरला की संस्कृति में छातों का वैसे बहुत महत्व तो है ही है, लेकिन वहाँ परंपराओं और विधि विधान का एक अहम हिस्सा भी है, और उसके लिए उन्होंने जो कार्थुम्बी छाते जिन्हें केरला के अट्टापडी में तैयार किया जाता है उसका विशेष रूप से जिक्र किया कि वो बहुत रंग बिरंगे छाते होते हैं और ये इनकी ऑनलाइन बिक्री भी हो रही है और ये सहकारी कृषि सोसाइटी की देखरेख में बनाया जा रहा है, तो इससे नारी शक्ति का भी उन्होंने जिक्र किया। ये सब काम महिलाएं करती, तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही। और फिर खेलों का जिक्र किया, पेरिस में ओलंपिक जो इस महीने शुरू हो चुके होंगे, उन्होंने कहा कि जब मैं आपसे बात करूंगा। और इसी कड़ी में ये भी श्रोताओं को बताना जरूरी है कि कल जब भारत की क्रिकेट टीम ने T20 का विश्व कप जीता, प्रधानमंत्री ने सभी खिलाड़ियों से बात करके उनको उस बारे में बधाई भी दी थी। तो खेलों के प्रति प्रधानमंत्री का जो एक विशेष प्रेम है और उनका वो जिस तरह से उत्साह बढ़ाते हैं, तो वो उत्साह बढ़ाने के लिए उन्होंने जो टोक्यो ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने जिस तरह से पदक लिए थे उसकी भी उन्होंने चर्चा की, और इसके बाद भी जहां जहां हमारे खिलाड़ी भाग लेते हैं तो इसका भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। टेबल टेनिस में पुरुष और महिलाओं की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है, इस तरह के जितने भी खेल है, और हम देखते हैं हमेशा प्रधानमंत्री जो भारत की बेटियां हैं, शूटर बेटियां हैं और जितनी भी महिलाएं भाग लेती हैं उनका विशेष तौर से जिक्र करते हैं।
बिल्कुल, और मन की बात कार्यक्रम का कैनवास इतना बड़ा है कि देश की 100 करोड़ जनता इस कार्यक्रम का बहुत बेसब्री से इंतजार करती है, और जब बीच में चुनाव की वजह से ये कार्यक्रम नहीं जा पा रहा था तो अनेकों नेक खत और टेलीफोन आते थे आकाशवाणी के पास कि ये कब फिर से शुरू होगा चुनाव के बाद। उनके खतों से, उनकी बातचीत से कितना इंतजार कर रहे हैं वो ये पता चलता था, और इसकी वजह शायद यही है कि इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने कैनवास को बहुत बड़ा रखा हुआ, ग्लोबल इश्यूज से लेकर SDGs से लेकर किसी व्यक्ति के बारे में बातचीत करना और उनको मोटिवेट करना। इसी कड़ी में इन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में बड़ी मात्रा में उत्पादित अराकू कॉफी जो होती है वो अपने सुगंध और स्वाद के लिए बेहद मशहूर है। तो इससे ये पता चलता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री कनेक्टेड हैं, न सिर्फ एक सोसाइटी से, न देश से, बल्कि व्यक्ति से भी।
बिल्कुल, और ये बात केवल भारत और भारतीयों के साथ ही जुड़ी हुई नहीं है, प्रधानमंत्री पूरे विश्व में इस प्रकार के जो भी कुछ दिलचस्प बातें होती हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। जैसे आज उन्होंने कहा कि कुवैत सरकार ने अपने राष्ट्रीय रेडियो पर एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है और वो कार्यक्रम हिंदी में है, यानी कुवैत रेडियो पर हर रविवार को इसका आधा घंटा प्रसारण होता है और इसमें भारतीय संस्कृति के अलग अलग रंग शामिल होते हैं, हमारी फिल्मों, कला से जुड़ी हुई चर्चाएं एवं भारतीय समुदाय के बीच ये सब चीजें बहुत दिलचस्पी के साथ वहां लोग देखते हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे तो यहां तक बताया गया कुवैत के स्थानीय लोग भी इसमें खूब दिलचस्पी दे रहे हैं, तो उन्होंने उसके लिए कुवैत की सरकार का धन्यवाद किया कि उन्होंने बहुत ही एक शानदार पहल की है। इसी तरह से तुर्कमेनिस्तान में इस साल मई में वहां के राष्ट्रीय कवि की 300वीं जयंती मनाई गई, तो उस समय वहां के राष्ट्रपति ने दुनिया के 24 प्रसिद्ध कवियों की वहां पर प्रतिमाओं का अनावरण किया और उसमें एक प्रतिमा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की भी थी। तो ये भारत का सम्मान है, गुरुदेव का भी सम्मान है। तो ऐसी और आगे अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि जून के महीने में दो कैरेबियाई देश सूरीनाम और सेंट विंसेंट और ये अपनी भारतीय विरासत को पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया। इन्होंने सूरीनाम में भारतीय समुदाय हर साल 5 जून को भारतीय आगमन दिवस और प्रवासी दिन के रूप में मनाया जाता है, तो यहाँ तो हिंदी के साथ साथ भोजपुरी भी बोली जाती है। तो इस तरह से उन्होंने ये बातें बताई कि विदेश में भी जो भारतवंशी रहते हैं, और जहाँ तक बात करें तो कई ऐसे देश हैं जहाँ पर हजारों की संख्या में, तो इन देशों में भारतीय आगमन दिवस का जिस तरह से धूमधाम मनाया जाता है, तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री अपने मन की बात द्वारा देश के दूर दूर क्षेत्रों में आदिवासी क्षेत्रों के लोगों से ही नहीं जुड़े रहते बल्कि विश्व के भी भारतवंशी जहाँ हैं उनके भी साथ जुड़े रहते हैं, उसके साथ अन्य देशों के जो लोग हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री अपना जुड़ाव रखते हैं।
बिल्कुल, और योग को पूरी दुनिया में फैलाने में और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब पूरी दुनिया जो मनाती है इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत योगदान बहुत बड़ा रहा है। आज के मन की बात में भी उन्होंने योग की चर्चा की और कहा कि इस महीने हमने बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ योग दिवस मनाया है और पूरी दुनिया ने मनाया है, तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से योग फैल रहा है पूरी दुनिया में और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अपना रहे हैं।
बिल्कुल, और इस साल तो प्रधानमंत्री स्वयं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुए थे और कश्मीर में युवाओं के साथ साथ बहनों बेटियों ने भी योग में बढ़कर हिस्सा लिया। तो जैसे जैसे योग दिवस का आयोजन आगे बढ़ रहा है तो नए नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं, इसकी भी चर्चा प्रधानमंत्री ने की। लेकिन प्रधानमंत्री का एक जो विशेष आग्रह हम देख रहे हैं लगातार हर उनके एपिसोड में रहता है वो होता है लोकल फॉर वोकल, और उस पर जोर देते रहे हैं। तो आज भी उन्होंने कहा कि भारत के कितने ही उत्पाद हैं जिनकी दुनिया भर में बहुत मांग है, और जब हम भारत के किसी स्थानीय उत्पाद को वैश्विक होते देखते हैं यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको देखते हैं तो हमें गर्व होता है, तो ये स्वाभाविक भी है। ऐसा ही एक उत्पाद उनकी आज की बात की जो आपने भी जिक्र किया वो रहा था आरू कॉफी, यानी आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में बड़ी मात्रा में तो पैदा होती है, ये अपने रिच फ्लेवर और अरोमा के लिए जाने जाते हैं। तो अब ये काफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है और ये आरू कॉफी की खेती से करीब 1.5 लाख आदिवासी परिवार जुड़े हुए हैं और आरू कॉफी को नई ऊंचाई देने में गिरिजन कोऑपरेटिव की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसने यहाँ के किसान भाई बहनों को एक साथ लाने का काम किया है और उन्हें आरू कॉफी की खेती के लिए प्रोत्साहित भी किया है, तो इससे इन किसानों की कमाई भी बढ़ी है। तो इसकी चर्चा करते करते उन्होंने ये भी कहा कि एक बार विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू गारू के साथ उन्हें उस कॉफी का स्वाद लेने का भी मौका मिला था, तो इसके स्वाद की तो उन्होंने कहा कि पूछिए ही मत, कमाल ही होती है। ये कॉफी आरू कॉफी को कई ग्लोबल अवार्ड मिल चुके हैं और दिल्ली में हुई G20 समिट में भी इस कॉफी की जो धूम थी वो छाई रही। प्रधानमंत्री हर क्षेत्र की जो एक विशेषता होती है उसकी भी चर्चा कर,
बिल्कुल, और यही वजह है कि मन की बात कार्यक्रम का लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, ताकि न सिर्फ देश और दुनिया में क्या हो रहा है इसकी चर्चा प्रधानमंत्री के मुख से सुने, बल्कि जो मोटिवेटिंग उनके लाइंस होते हैं उसको अपनाकर लोग किस तरीके से आगे बढ़ें। अशोक जी, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।